समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो जया। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू ट्यून टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट जया। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi inaugurates interim terminal building at the new civil enclave of Purnia Airport in Bihar.
सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर लगाई रोक। इसमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम पालन करने वाला प्रावधान भी शामिल। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले का स्वागत किया।
Person to merchant transactions of UPI single day limit raised to 10 lakh rupees in specified categories.
झारखंड के हजारीबाग जिले में मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए।
And in Asia Cup cricket, Sri Lanka to take on Hong Kong in Dubai and UAE to clash with Oman in Abu Dhabi. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we'll talk about Makhana and Makhana Boat. Well, listeners, we hope you're having a healthy and energetic day so far. And if not, don't worry. Today we are here to introduce you to a super snack that's not only tasty, but also packed with amazing health benefits. Any guesses, Jaya?
चलिए हम आपको एक इशारा दे देते हैं। ये कुरकुरा होता है, हल्का होता है, सफेद होता है और भारत की रसोई में अक्सर व्रत के दौरान मिल जाता है। जी हाँ, अभी हमने इसका जिक्र भी किया था मखाना बोट के बारे में। हम बात कर रहे हैं मखाने की, जिसे मखाने या लोटस सीड्स भी कहते हैं।
यस सर, मखाना इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लैक डायमंड ड्यू टू इट्स डार्क आउटर लेयर। इट इज ग्रोन इन स्टेग्नेंट पेरिनियल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लैंड डिप्रेशंस, ऑक्सपो लेक्स, स्वाम्स एंड डिचेस विद वाटर डेप्थ्स ऑफ 4 to 6 feet। मखाना इज नाउ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सुपर फूड। मखाना माइट look small but don't be fooled, it's a powerhouse of nutrition.
और क्या आप जानते हैं कि सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल होता आ रहा है? जी हाँ, और आज के पोषण विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी इसे सभी उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन नाश्ते के रूप में सुझाते हैं। आइए मखाने के कुछ प्रमुख फायदे के बारे में जानते हैं। कम कैलोरी, ज्यादा प्रोटीन, उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो बिना भूख लगे वजन कम करना चाहते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा। मखाने में मैग्नीशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
Yes, and it's great for digestion too, and it's rich in fiber and low in fat, ideal for keeping your digestive system running smoothly. And anti-aging properties, makhana contains antioxidants that fight free radicals and slow down aging. So yes, it's your crunchy ticket to glowing skin. And lastly, it helps manage diabetes, and with its low glycemic index, makhana helps control blood sugar levels. And Prime Minister Narendra Modi will launch the National Makhana Board in Bihar.
और यही सब चीजों को देखते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की विकास यात्रा के लिए कृषि को प्रथम इंजन के रूप में अपनाने के उद्देश्य से बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इस बोर्ड का उद्देश्य है उत्पादन और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा देना, फसल के बाद उसके रखरखाव को सुदृढ़ करना, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, साथ ही मखाना के बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को आसान बनाना, जिससे देश भर के मखाना किसानों को लाभ मिलेगा।
And the board will be established to improve production, processing, value addition and marketing of makhana. Board will also provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. To streamline operations and improve collective bargaining power, people engaged in these activities will be organized into farmer producer organizations, FPOs.
और श्रोताओं बता दें कि देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन बिहार में होता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया जैसे प्रमुख जिले प्राथमिक केंद्र के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अनुकूल जलवायु परिस्थितियां और उपजाऊ मिट्टी है जो मखाना की बेहतर गुणवत्ता में योगदान करती है।
Yes, and the establishment of the Makhana Board in Bihar will give a major boost to the makhana production in the state and the country and strengthen the presence of Bihar on the global map in this sector. Makhana, cultural superfood of Mithila, received the GI tag and the National Research Center status. PM Narendra Modi has highlighted its importance as a superfood.
साथियों, मखाना आज देश और दुनिया के लिए superfood है, लेकिन मथिला की तो ये संस्कृति का हिस्सा है। इसी संस्कृति को हम यहाँ की समृद्धि का भी सूत्र बना रहे हैं। हमने मखाने को GI टैग दिया है, यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है। इस पर अब आधिकारिक मोहर लग गई है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है।
श्रोताओं, पूर्णिया के मखाना उत्पादक किसानों और व्यापारियों ने मखाना बोर्ड के उद्घाटन का स्वागत किया है। पूर्णिया के एक व्यापारी विकास ने कहा कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
मैं विकास कुमार, ग्राम हरदा, जिला पूर्णिया के निवासी हूं और मखाना व्यवसाय से जुड़ा हूं। हमारे पूर्णिया में मखाना बोर्ड गठन होने से हमें बहुत सारे फायदा है, जैसे हमें निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में मखाना हमें आसानी होगी। हमारे यहां बोर्ड गठन होगा तो हम लोगों का कारोबार में आगे होगा और हमारे किसान और हमारे जो भी मखाना जुड़े हुए हैं सबको फायदा होगा।
And talking to Akashvani, a makhana merchant hailed the launching of the makhana board.
मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हरदा बाजार से एक मखाना व्यापारी हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मखाना बोर्ड का गठन होने से पूर्णिया में व्यापारी को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ के मखाने के प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड में जाएगा। मैं इसके लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार हूँ। इस बोर्ड के गठन होने से हमारे प्रोडक्ट को बहुत लाभ मिलने वाला है, इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूंगा।
श्रोताओं, बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र भारत में उच्चतम गुणवत्ता वाले मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कुल आपूर्ति का 80% से अधिक हिस्सा यहीं से आता है। मिथिला मखाना को इसकी विशिष्ट गुणवत्ता और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के कारण GI टैग प्राप्त हुआ है।
And the region's natural wetlands and suitable weather conditions make it an excellent place for growing this crop. The traditional processing and roasting processes used by local farmers increase its nutritional value. This ultimately guarantees that Mithila Makhana preserves its rare taste, texture and health advantages. And apart from Bihar, other states producing Makhana are West Bengal, Manipur, Tripura, Assam, Jammu and Kashmir, Odisha, Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh only.
मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 2001 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो मखाना प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
Yes, and one district, one product, ODOP, makhana recognized under ODOP for the districts of Darbhanga and Muzaffarpur from Bihar. And the GI tag in 2022, Mithila makhana was conferred a GI tag.
राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र यानी कि NRCM दरभंगा मखाना अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्पित एक सुसज्जित संस्थान है, जिसे वैज्ञानिकों की एक कुशल टीम का समर्थन प्राप्त है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में उच्च उपज वाली मखाना और कांटे रहित सिंघाड़े की किस्मों का विकास, जल कुशल और एकीकृत कृषि प्रणालियों की शुरुआत और मखाना सह मछली पालन की शुरुआत शामिल है। भारतीय कलम, एकुरस कैलमस और एलोकेसिया मोंटाना जैसे औषधीय पौधों की खेती की पद्धतियां भी स्थापित की गई हैं।
Yes, and several equipment machines for makhana popping and value-added products have been developed and licensed to manufacturers for commercialization, namely makhana seed washer, makhana seed grater, makhana seed primary roasting machine, makhana seed popping machine, popped makhana grater, and various type of value-added products. And the NRCM has trained thousands of farmers and entrepreneurs, driving regional industries and livelihoods. Makhana cultivation has expanded from approximately 13,000 to 35,000 hectares across multiple states.
अभिषेक, अभी हमने इतनी सारी बातें बताई मखाना के बारे में, कितना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, अच्छा सरकार क्या पहल कर रही है, लेकिन अब हम बताते हैं कि अच्छा मखाना कैसे चुन सकते हैं।
बिल्कुल।
तो मखाना चुनते समय हमेशा ध्यान दें कि वे बड़े होने चाहिए, सफेद और हल्के बीज चुने, यह बीजों की बेहतर गुणवत्ता और ताजगी का संकेत देता है। सबसे अच्छा मखाना कुरकुरा होना चाहिए और कच्चा खाने पर चबाने में मुश्किल नहीं होना चाहिए।
Yes, and here, Jaya, let me also tell our listeners that one should avoid makhana with a yellowish or brownish tint, as it may be because of poor processing or aging. So to conclude our discussion, the next time you're reaching for a packet of unhealthy snack, stop. Instead, grab a handful of roasted makhana and snack smart, because good health begins with good choices.
बिल्कुल, और इस अद्भुत सुपर फूड के फायदों के बारे में आज हम बस इतना ही बता रहे हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ये ना भूलें कि थोड़ा सा मखाना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, and guided by the mantra of Seva and Sushasan, that is public service and good governance, the government under Prime Minister Narendra Modi has been working tirelessly to bring transformation and progress. And today in the special series Seva Parv, we bring to you how the Modi government has transformed the Holy Ganga through the Namami Gange campaign.
River Ganga is the lifeline of India, sacred, eternal, and a vital artery of India's economy. The Namami Gange program, launched in June 2014 by the Narendra Modi government, is an ambitious and holistic initiative to restore the health of the river Ganga. Prime Minister Modi has emphasized that cleanliness of Ganga is a collective responsibility.
सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की।
Namami Gange is a multifaceted approach integrating pollution abatement, ecological restoration, capacity building, and community engagement. It focuses on both the river's environmental integrity and the livelihoods of millions who depend on it. The program has made significant strides in pollution abatement. Sewage treatment capacity has surpassed the pre-2014 capacity by over 30 times. The improvement in the riverine ecosystem is substantiated by the increase in population of gangetic dolphin. In fact, dolphins are now recorded from previously unreported stretches of the Ganga River.
हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। United Nations ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है।
What was once seen as an impossible dream has been turned into a national movement under Narendra Modi's leadership. The sacred Ganga, long burdened by neglect, now flows with new hope as faith meets fierce action and vision becomes a reality.
इस बीच वस्तु और सेवा कर परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती होने जा रही है और आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने 2005 रुपए से कम मूल्य के जूते चप्पलों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की श्रेणी में थी। कांच की मूर्तियां, लोहे, एल्यूमिनियम, पीतल और तांबे से बनी कलाकृतियों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। मीडिया से बात करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञ टी सुरेश ने कहा कि इन सुधारों का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सो द रिफॉर्म्स बोथ इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी विल डेफिनेटली हैव अ बिग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, बिकॉज़ इफ यू सी ऑन फरवरी 1st अप टू 1 लाख पर मंथ इफ यू आर नॉट अ सैलरीड क्लॉज यू डोंट हैव टू पे टैक्स, सो दैट मींस मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल।
त्योहार के सीजन से पहले ये अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आम आदमी पर कर का बोझ कम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था की गति को और अधिक बढ़ावा देंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
National Engineers Day has been celebrated today to honor the birth anniversary of Bharat Ratna Sir Moksha Gundam Vishweswaraya, one of India's greatest engineers. And this day is celebrated every year on September 15th to remember Mr. Vishweswaraya's contributions and honor the role of engineers in the nation's growth. We have a report.
Renowned for his pioneering contributions to engineering, M. Vishweswaraya transformed the country's infrastructure through innovative designs, visionary planning and practical solutions. His role in developing the innovative flood management systems after the 1908 Musi River floods, building the Krishna Raja Sagar Dam in 1932, reservoir-based flood management principles and influential literary works have set a benchmark for problem solving and continues to inspire the engineers of today. As the nation embarks on its tech decade, the role of engineers has become increasingly vital. They have led the pathway for building a modern India through infrastructure development, space and robotics, and digital India initiatives like Aadhaar, UPI, and DigiLocker. The government is also dedicated to promoting engineering excellence, research, and innovation through a robust ecosystem. The Skill India Digital Hub, Atal Innovation Mission, Startup India Initiative, and the Anusandhan National Research Foundation have led this transformation. The total number of students in 23 IITs has more than doubled from 65,000 to over 1,35,000 in the past 10 years. India's engineers are poised to drive the nation toward Viksit Bharat 2047, ensuring progress that is inclusive, sustainable and transformative. Adarsh for Parikrama, Akashvani News, Delhi.
As we celebrate Engineers Day today, let's go to Mumbai, which houses some of the most significant engineering marvels. The enormous list includes the iconic Gateway of India, Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum, Flora Fountain, the Asiatic Library, and many more. Let us know more about some of these architectural and historical wonders from a Mumbai correspondent.
Many of Mumbai's iconic buildings, designed mostly by British designers, were built from the ground up by Indian resident engineers. One of them stands just opposite the iconic Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, previously known as the Victoria Terminus. It is known as the BMC headquarters or as the MCGM, the Municipal Corporation of Greater Mumbai. To tell us more about this marvelous architectural wonder and how an Indian, moreover a Marathi engineer, Rao Saheb Sitaram Khanderao Vaidya, played a pivotal role in building it, we have with us Rizwan Dadan, who works as an ambassador of Mumbai with Khaki Tours. Let's listen in.
Both these grand structures were designed by F.W. Stevens of Frederick William Stevens. The MCGM cornerstone was laid out in 1884, but the construction only started in 1889 and the building was completed by 1893. The contractor who was instrumental in building this structure was our own Indian contractor, Rao Saheb Sitaram Khanderao Vaidya. Although Rao Saheb did start the construction, but he was not able to see the end of it because he passed away midway of the construction. This building was later on completed by another English contractor, W.A. Chambers. This structure has all architectural styles in one. Rao Saheb was not only known for this grand structure, but he was also known for a very iconic structure which stands at the seafront, which is the Taj Mahal Palace Hotel.
This Engineers Day, we ought to remember those who envisioned and built these classic structures, including the BMC headquarters, which not only triumph in the test of time, but also embody the very essence of seamless blends of various architectural styles and aesthetic supremacy. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
The long-awaited Wayanad Tunnel is becoming a reality in Kerala as the project has been launched recently. The twin tunnel also opens wider possibilities of connectivity, tourism and logistics. Our correspondent has filed this report.
Today, let us talk about one of the most awaited infrastructure projects in Kerala, the Anakambuil-Kalladi-Mepadi Tunnel Road, popularly known as the Wayanad Tunnel. At present, the main road to Wayanad passes through the Thamarachery Mountain Pass. This stretch, which is 9 hairpin bends, is not only narrow but also extremely challenging for drivers. Recently, a landslide near the 9th hairpin bend raised serious security concerns. For about a week, multi-axle vehicles are banned and people had to depend on the alternative routes through Kuttiyadi, Palchuram and Pakrandalam passes. But these routes too are not entirely safe. In fact, this is not the first time traffic has been disrupted on the mountain pass. In the past, landslides and even tree felling have caused severe difficulties. Widening the present cut road is nearly impossible. The rocky and steep terrain does not permit much expansion. And since it is a forest area, environmental restrictions also stand in the way. All these highlights the urgent need for a safer and more reliable road. Link. That is where the proposed tunnel comes in. Once completed, the 8.1 kilometer long tunnel will not only make travel smoother but also cut short the distance between Kochi and Bengaluru, making goods movement faster and more economical. Importantly, it will be Kerala's first tunnel road and with its length, the third longest tunnel in India. The project, which will be executed by the Konkan Railway Corporation, was formally inaugurated on August 31st by the Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan. The design consists of twin tunnels, each measuring 10 meters wide. The estimated cost of construction is a massive 2,134 crore rupees. When this tunnel becomes a reality, it is expected to transform travel to Wayanad. No more dangerous bends, no more frequent traffic blocks due to landslides. Instead, a safe and quick passage across the western cuts. It will also open new possibilities for tourism and trade, giving a boost to the economy of the region. Anil Chandran for Parikrama from Kozhikode.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले एशिया कप क्रिकेट में आज अबूधाबी में ग्रुप ए के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात का सामना ओमान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। दुबई में ग्रुप ए के एक अन्य मुकाबले में भारत में रात 8 बजे श्रीलंका का सामना हांगकांग से होगा।
Yes, and India's Anand Kumar Velkumar made history by winning the country's first ever senior medal at the Speed Skating World Championships, claiming bronze in the 500 meter plus D sprint. And the achievement comes just weeks after he won another bronze in the 1000 meter sprint at the World Games in Chengdu, China, also a first for India. Some business news. Benchmark domestic equity indices ended on the negative zone today, and both the indices snapped the previous week's winning streak. The Sensex lost 119 points to close at 81,786, while Nifty declined 45 points to settle at 25,069.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On this day in 1891, a revolutionary who gave us our salutation, Jai Hind, and fought for India's independence from the foreign land, was born. The name of this legendary freedom fighter is Chempakraman Pillai, also called Jai Hind Pillai.
Thirsting for freedom of the country, Pillai wanted to create an anti-British army and redeem India from the foreign rule. Chempakraman Pillai was born in Thiruvananthapuram to Tamil parents. It is said that Raman Pillai rallied against the British and shouted out Jai Hind or Jai Hindustan Ki in the school campus.
Raman Pillai continued his education in Austria and went on to complete his diploma in engineering. He also graduated in public governance and economics and had a grasp over 12 languages.
In 1914, when the First World War broke out, overseas Indian revolutionaries attempted to seize the opportunity to enlist German support for India's fight for freedom. Pillai was one of them.
The Indian revolutionaries in Europe contacted the German embassy in Zurich. In September 1914, the International Pro-India Committee was formed with Pillai as the president
and Zurich as the headquarters. From Zurich, Pillai ran the German-English monthly Pro India. The magazine put forward the Indian view of the world to the German people.
In October 1914, Pillai founded the Berlin Committee in support of the Indian cause. The following year, the International Pro-India Committee and the Berlin Committee combined to form the Indian Independence Committee. A series of plans were put together between 1914 and 1917 to form an international front against the British Raj.
The Indian revolutionaries even went so far as to form a provisional government of India in Kabul in 1915 with Champakraman Pillai as the foreign minister. The plan was to bring Turkish and German soldiers to Afghanistan and assist Kabul in launching a war against the Raj.
The attack on the northwest frontier would be reinforced by a mutiny in the Indian Army and a popular upsurge against the British rule. But the plan failed and led to a severe backlash from the British.
After the World War I ended, Pillai stayed on in Europe and continued his nationalist work. He died in Berlin in 1934 with a last wish that his ashes be carried on a ship with tricolour flying on it. Pillai's wife Lakshmibai returned to India with his ashes.
She travelled with them from Bombay to Thiruvananthapuram aboard INS Delhi some years after the independence and immersed them in the river Karmana.
Also on this day in the year 1940, one of the most important resistance movements against the British rule in Malabar took place at Kannur district in Kerala. The Provincial Congress Committee gave a call to the people of Malabar to observe 15 September as Anti-Imperialist Day.
There were meetings and demonstrations all over Malabar against the imperialism. Violent clashes took place between the people and the police at several places. Two young men were killed in a clash between a mob and a police party at Murara.
In connection with this incident, K.P.R. Gopalan, a prominent communist, was arrested on a charge of murder and later sentenced to death. But, owing to the intervention of political leaders, including Mahatma Gandhi, the death penalty was not carried out.
हम याद कर रहे हैं भारत के दूसरे परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक करम सिंह को. इन्हें यह सम्मान सन 1948 में मिला था. आज कैप्टन करम सिंह की जयंती है. आज ही पुण्यतिथि है गोवा मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ नारायण लवांडे की. उन्होंने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए कड़ा संघर्ष किया था.
Yes, and Sarat Chandra Chattopadhyay was born on this day. In 1876, he was a Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. He generally wrote about the lives of Bengali family and society in cities and villages. However, his keen powers of observation, great sympathy for fellow human beings, a deep understanding of human psychology, including the ways and thoughts and languages of women and children, an easy and natural writing style, and freedom from political biases and social prejudices enable his writing to transcend barriers and appeal to all Indians. He remains the most popular, translated and adapted Indian author of all time.
आज जयंती है डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की, जिन्हें आज भी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान से याद किया जाता है. 1955 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था और विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर ही आज अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया जाता है.
Agatha Christie was born on this day in 1890. She was an English author known for her 66 detective novels and 14 short story collections, particularly those revolving around fictional detectives Hercule Poirot and Miss Marple. And she is widely regarded as one of the greatest writers, particularly in the mystery genre. A writer during the golden age of detective fiction, Agatha Christie has been called the Queen of Crime, a nickname now trademarked by Estate or the Queen of Mystery. And she wrote the world's longest running play, The Murder Mystery, The Mouse Trap, which has been performed in the West End of London since 1952. She also wrote 6 novels under the pseudonym Mary Westmacott. In 1971, she was made a dame by Queen Elizabeth II for her contributions to literature. And she is the best-selling fiction writer of all time, her novels having sold more than 2 billion copies.
प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी आज ही के दिन दुनिया में जन्म लिया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। वे आकाशवाणी में सहायक निर्माता, निर्माण के उप संपादक और पराग के संपादक भी रहे थे।
Yes, and Tom Hardy was born on this day in 1977. He is an English actor. After studying acting at the Drama Centre, London, he made his film debut in Ridley Scott's Black Hawk Down in 2001, and he has since starred as a title character in the film Venom 2018 and his two sequels in 2021 and 2024.
आज जन्मदिन है आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। वे हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंगकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं।
सो विद दैट वी वाइंड अप दिस एडिशन ऑफ परिक्रमा। सो फ्रॉम जय भारती एंड मी अभिषेक मुखोपाध्याय, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय एंड नमस्कार।